es una palanca soez. De mantar carte carte. भाव के सुंदर पुरुष वतस पर से कृष्ण की लीलाओं का भयन करते हुए यदि मंथन कर रही थी, यदि मंथन से जो स्वर निकलता था और उसके साथ मानो मृदंग का पिछला भाग और कंगन जो बजते थे मानो वो
कंठाल
और आंख बंद करके प्रेम से कृष्ण की बाल लीलाओं का और मधुर स्वर से गा भी रही थी। कृष्ण कितने सुंदर हैं, किंतु मैया सुंदर नहीं होगा तो बेटा सुंदर होगा? यशोदा मैया कितनी सुंदरी है और कृष्ण का स्वर जो मधुर है वो यशोदा मैया के वजह से है। इसलिए कृष्ण जग गए और मैया को बुलाने देखा कि मैया तो है नहीं, भूख लगी है, दूध पिलाना। फिर जोर जोर से रोने लगे किंतु मैया का ददरी का मंथन से वो सब दर्द सुन नहीं पाए। ददरी मंथन कर धीरे धीरे किसी प्रकार से खाट से पलंग से उतर करके आए। यशोदा मैया का ददी मंथन एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से यशोदा जी का जीवन। यशोदा मैया का ध्यान भंग हुआ, देखा जी उनका ददी मंथन बंद करके दूध पिलाने लगे। दूध किसको पिला रहे? विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक के अधिनायक भगवान के लोग। तो उनका पेट कितना बड़ा है इसका, जिसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड आज कृष्ण की भूख मिटेगी नहीं। आज जो यशोदा मैया का दूध पड़ेगा वो खीर समुद्र लाख निकलता है। इधर दूध रखा था, दही बनाने के वो उछल उछल करके कृष्ण यशोदा मैया सूची हमारे दूध से ही तो संदेश और ये सब घी नहीं बनेगा, कृष्ण के लिए और सब चीजें नहीं बनेगी, इसलिए दूध को बचाना जरूरी है। और दूध सोच रहा यदि मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो जीवन रखने की जरूरत है। भक्त लोग ऐसा ही समझते हैं, यदि जीवन कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो बेकार है, मर जाएंगे। इसलिए जो यशोदा मैया जिन्हें पहले दूध को बचाना है, मैं अपनी सेवा पीछे करूंगा, पहले इनको सेवा देना। कृष्ण किंतु पकड़े हुए हैं स्तन को, मोक्ष भी पकड़े हैं और बंदरों जैसा यशोदा मैया को भी पकड़ रखा, किंतु यशोदा मैया ने क्या किया? एक हाथ से बैठ और उनका उतार करके बैठा। उतना 60,000 हाथियों की बल वाली स्तन नहीं छुड़ा सके, बहुत चेष्टा की। और यशोदा मैया देखो एक गोपी सा नहीं कुछ कर सके, बैठ गए। तो यशोदा मैया ने जल के छींटे से दूध को शांत किया और जब लौटी तो क्या मेरी को क्रोध हो गया, गति मंथन खंड में पीछे से एक पत्थर के लोड़ी से छेद कर दिया और सारा वो बन गया। कृष्ण देख बड़े खुश हो गए, फिर तो याद आएगी, मैया आएगी मारेगी। इसलिए वहां से निकल करके एक घर में गए, यहां से रास्ता भी था और भीतर भी दरवाजा बाहर। तो सुधा मैया आई तो हंसी, कितना नटखट जोग माया के द्वारा कृष्ण की भगवत्ता वहां पर ठकती। और उसी तरह से जसोदा मैया कोटि कोटि ब्रह्मा को सृजन जसोदा मैया कर सकती, किंतु योग माया ने वात्सल्य भाव के लिए उठा और कृष्ण भी अपनी भगवत्ता को भूले। ऐसे ही ब्रज में कृष्ण से लौकिक बंधु का भाव रखना हो, कृष्ण मेरे लगते हैं तब तो वो बस तो सदा मैं यहाँ के लठिया लेकर कैसे देखा जे पोखर के ऊपर में बैठा, अंदरों को खिला रहा है, अपने भी खा रहा है, कौओं को भी खिला रहा है। तो सदा मैं जब एकदम निकट पहुंची तो करके भागा। काल जवन जैसा आदमी जरा संदूर को पकड़ नहीं सका, और जो भी लोग अपने शुद्ध किए हुए निर्बल मन से भी उनको मन में भी नहीं पकड़ पाते हैं, ध्यान में नहीं आते, आज यशोदा मैया उनसे वेग से अधिक दौड़ करके, कृष्ण से भी अधिक दौड़ करके मारूं। कृष्ण रोने लगे, मैया मुझे मत मार। जब खूब रोने लगे तो उनको दया है भाई, अच्छा तो इसको बांध करके नहीं तो कहीं ब्रह्मांड घाट में और कहीं जमुना में कहीं यापन में ना चला जाए, शांत हो जाएगा तो फिर इसको दूध पिला कर दर्दी भी मन कर। इसलिए बांधने के लिए चेष्टा करने अपने केश की जो देश की जो वो भी 2.5-3 गज की होती है, कृष्ण को बांध करके वो खल से बांधेगी जिसे कृष्ण खोल ना सके। पीछे मोदा खल है, कृष्ण को बांधी लपेट करके और फिर वो खल में बांधेगी, वहां तक उसका हाथी न समझने नहीं है कि विश्व ब्रह्मांड में उनका कहां नहीं हाथ जाएगा, किंतु वो बांधने की चेष्टा कर उसे नहीं बंधा, कितने 2 अंगुल कम हो गए। और फिर अपने घर की सारी रस्सियों को मंगवाया, फिर भी 2 अंगुल कम, 3 अंगुल 4-5 नहीं 2 ही अंगुल कम नहीं अधिक। फिर दूसरों घरों से रस्सियां मंगवाई, पास पड़ोस जोड़ती गई, लंबी होती गई और कृष्ण की कमर बस उतने ही पार हम उनके। तो क्या चिन्ह है, भगवान को बांधने के लिए अपनी चेष्टा होनी चाहिए और भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक ये नहीं जो भगवान कृपा करेंगे तब बंधेंगे, ऐसा नहीं। सवेरे जो पूछ रहा था वहां अपनी चेष्टा होनी चाहिए, उसकी परिश्रम को देखकर कृष्ण का चित्त द्रवित हो जाएगा। तो स्वयं दोनों चीज की जरूरत, कृष्ण की कृपा तो है ही है किंतु अपनी प्रचेष्टा भी रहे। यशोदा जी ने मनी मन में सोचा अपने बालक को नहीं बांध सकती अपने बेटे को, इसलिए आज नहीं कल नहीं परसों नहीं सारा जीवन बांध के किंतु बांधूंगी, प्रण कर लिया, पसीने से लथपथ हो गए और अपने गृह देवता नारायण से करने लगी प्रार्थना, हे नारायण क्या हम अपने बेटे को बांध नहीं सकते, इन गोपियों को मुख कैसे निकले, और गोपियां ताली बजा रही हैं जैसे इसके ललाट में बंधन ही है तो क्या बांधेगी। तो जब प्रतिज्ञा कर लिया जब हम तो बांध करके गए, नहीं तो खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, उनका परिश्रम देखा पसीना देखा, बंधन गया हो, गया होने से कृपया सीख सकता स्वयं, ऐसे ही अपनी चेष्टा भी करनी चाहिए। और कृष्ण साधन के परिश्रम से कृष्ण का चित्त द्रवित होगा, इतना साधन करेंगे कि कृष्ण प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकश्यपु ने कहां कहां विष दिया मरवाने की चेष्टा, और वो भगवान का स्मरण करते हैं नृसिंह जी का चित्त। ऐसे ही इन्हें जो भजन नहीं करेगा, उनका कष्ट नहीं उठाएगा, तो चित्त नहीं द्रवित होगा, तो भक्ति कैसे आएगी? कृष्ण को पान करके प्रेमा भक्ति जो ब्रज की हो नहीं होती। ऐसा साधन भजन कर जी गुरु का चित्त द्रवित हो जाए, भगवान का चित्त द्रवित हो जाए। गौ
कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनन्दने गौरभक्तिः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय परभक्ताय। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरु पाद भक्ति का ध्यान महाराज श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि ज्ञापन तत्पश्चात श्रीगंडीपादगण ब्रह्मचारीगण उपस्थित वैष्णव वैष्णवी और सज्जन महोदय एक समय की बात है, हिरण्यकश्यपु का भ्राता हिरण्याक्ष मारा गया, उसके अंग भंग को जोड़कर जो टूट गए हैं काट दिए गए हैं हाथ एकत्र करके राजभवन में लाया गया और सफेद चादर उसके ऊपर उठा दिया गया और सभी लोग रो रहे हैं। कोई समझाने वाला नहीं, हिरण्यकश्यपु खुद बड़ा भारी शास्त्रविद था, वेद परिषद शास्त्र जानता था, किंतु पालन नहीं करता, मोहित रोते क्यों हो भाई? रोने की कोई जरूरत नहीं, यदि संसार विश्व भर के लोग रोए हजार करते तब तो वो लौट करके तो आएगा नहीं, तो रोने की क्या जरूरत है? और भी ऐसी बात है, इसलिए रोते हो किसी ने बतलाया ये मर गए तो कहीं नहीं है, कागज उठा दो बातचीत करो, गए तो नहीं है, तो नहीं ये चले गए कहाँ सर? तो जिस तरीके से तुम बेटा का थे, पिता का थे, पति का थे, वो शरीर तुम्हारे सामने ये पड़ा हुआ है, इसे बातचीत कर लो, ये नहीं उसकी आत्मा चली, तो वो नहीं गए हैं, आत्मा गई है, तो वो यदि हैं और उनकी आत्मा चली गया तो आत्मा तो चली जाए, हाथ कट गया तो हाथ चला गया तभी तो बोलता है, तो ये तो है यहाँ समझो को बातचीत कर से नहीं, उनके अंदर में जो आत्मा थी वो चली, तो वो आत्मा थे न शरीर थे, कौन थे? यदि शरीर थे तो यहाँ पर सोए हुए हैं बातचीत कर, और यदि आत्मा थे तो वो शरीर से अलग थे, अच्छा वो आत्मा जो चली गई, प्राण चला गया, उसको कभी देखा? कभी देखा? गोरा था या काला था, लंबा चौड़ा कितना था, कभी देखा? कभी भेंट हुई तो नहीं, तो फिर उसके लिए क्या रोते हो? जिसके लिए देखा था, जिससे संबंध था, वो तो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। और जो आत्मा चली गई उसको कभी नहीं देखा, उसके लिए रोते हो? तात्पर्य इसका ये है कि हम यह शरीर नहीं है, इस चीज को समझिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति के विचार, वेद उपनिषद इत्यादि में ये सब बात। हम जिसको शरीर मान करके इसके सुख के लिए, इसके अंदर में मन के सुख के लिए जो कुछ करते हैं, वो शरीर यही रह जाता। शरीर से कमाया हुआ रुपया पैसा, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र परिवार, बाल बगीचे, पशु पद ओहदे, सभी यही इसी जगत में रह जाते हैं, कुछ भी नहीं जाता। एक पैसा गमड़ी लेकर के इस जगत से नहीं जाना। अनादि काल से सृष्टि के प्रारंभ से ही, अभी जो ब्रह्मा है, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा बीत गए हैं, सृष्टि का आदि अंत नहीं है, तब से हम हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, किंतु कोई सुखी नहीं है। पर मैं तो बहुत सुखी हूँ, धनी हूँ, मानी हूँ, हमारे बेटे योग्य हैं, मैं प्रधानमंत्री हूँ, यहाँ का कोई हूँ, नेता हूँ, एक दिन बूढ़ा होगा कि नहीं, बीमारी है कि नहीं, और एक दिन शरीर को छोड़ेगा कि नहीं, ये बंधु बांधव एक कौड़ी भी नहीं ले जाएगा, कहाँ जाएगा, ये भी ठीक नहीं। इसलिए अनंत काल से हम जन्म मरण के चक्कर में चल रहे हैं, इसी का नाम है भवरोग। ये है भवरोग, भव माने संसार, आने जाने का। पहली बार हम मनुष्य होकर के यहीं आए हैं, करोड़ों करोड़ों बार स्त्री पुरुष, कभी गंधर्व, कभी ब्रह्मा, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कीट पतंग हुए हैं, कभी सुपर सुपर गधे बंदर हुए। अब इसके बाद में जैसा कर्म होगा वैसा फिर जाना पड़ेगा चौरासी लक्ष में, ये झूठी बात नहीं है, अवश्य। इसलिए औरों के छुटकारा के लिए शास्त्र में आप लोग पालन करेंगे, ये जीवन में भी सुखी रहेंगे, लोक में। ब्रह्मा जी ने सृष्टि और ध्यान लगाया, संसार में जीव लोग के लिए बड़े दुखी हैं, क्यों विचार करके देखा, ये भगवान के अंश है। जीव जो है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूते, हम जो जीव हैं, शरीर नहीं, शरीर तो हाड़ मांस रक्त और पैखाना पेशाब की थैली है। भगवान ने सुंदर चमड़ा ऊपर से देखा, इसे सवाल रखा, किंतु इसकी चमड़ी उभेड़ दी जाए तब से क्या रहेगा, और किसी को कोई प्यार नहीं करेगा। वो तो बात रहे, एक यहाँ या कहीं पर सफेद दाग हो जाए ना तो विवाह नहीं होगा, लड़कियों का तो गया जो पूर्व हो। इसलिए ब्रह्मा जी चिंता कर रहे हैं कि भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा, सबसे भगवान जैसे आनंदमय है, जीव भी आनंदमय है, हम इस जगत की कोई वस्तु नहीं है, भगवान के हम भगवान की सेवा में तन्मय हो रहे थे, और किसी विशेष कारण से भगवान को भूल गए, उस सेवा को भूल गए, और माया ने हमें भूल से किया इस जगत में, और तन मन के चक्र में। हमारे दुखों का यही मूल कारण है, उस भगवान को भूल गए जिसके साथ में हम आनंद से सेवा करें। फिर उस अवस्था को कैसे प्राप्त करेंगे, उसी भगवान को याद करके कीर्तन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उनको याद करेंगे उनके वैष्णव के संग, तो हम फिर उनको स्मरण करके और फिर इस संसार भाव तक पहुंचे। इसी का नाम साधु संग इत्यादि कहा गया। जो ये भक्ति है, भगवान की सेवा का नाम भक्ति है। भक्ति कहते हैं कि ईश्वरे परानुरक्ति ईश्वरे, भगवान के चरणों में परम अनुराग हो। और भी बहुत सी कही है किंतु श्री ललित गोस्वामी ने केतन महापुरुष सब परिभाषाओं को केंद्रीभूत कर थोड़ी भूत कर एक भक्ति की परिभाषा जितने संगी अन्य विलासिता संगम ज्ञान परमात्म ज्ञानाप्रतम अनुकूल कृष्णानुशील। इसका तात्पर्य संक्षेप में बताया, जब अनुकूलन कृष्णानुशीलन, जब किसी रियलाइज हो अनुभवकारी गुरु या वैष्णव के अनुगमन कर तैल धारावत अविच्छिन्न गति से तन मन वचन की सारी चेष्टाएं और इसके अतिरिक्त भावनाएं उसके द्वारा कृष्ण की सेवा हो तो वो भक्ति कहलाती है। किंतु यदि उसमें भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा न हो और वो भक्ति ज्ञान कर्म योग तपस्या व्रत होम स्वाध्याय जप तप से ढकी हुई न हो तो उत्तमा भक्ति है। गुरु जी की भक्ति है भगवान का मंत्र जप के भगवान का दर्शन पाए, किंतु थोड़ी सी भक्ति उसमें है अपने पिताजी का राज्य पाने के लिए, ये भगवान की भक्ति तो राज्य मिल गया इसलिए भक्ति नहीं है, इसको भक्ति नहीं करते। ज्ञान कर्म जो की सहायता से भक्ति होगी ये भी नहीं, भक्ति स्वतंत्र अवलंबना है। इस यही भक्ति का एक क्रम है संक्षेप में वैराग्य, वो क्रम क्या है आदौ श्रद्धा तथा साधु अथा भजन क्रिया ततो अनर्थन ततो निष्ठा ततो रुचि आसक्ति। इसके बाद में ये इसके क्रम है, भाव के बाद में इसका कोई साधन नहीं है, भाव का कुछ साधन है। अच्छा साधन किसको कहते हैं पहले समझो, हम जो कुछ करते हैं वो सब साधन नहीं है, साध्य हवे साध्य भाव ससाधन विरा नित्य सिद्ध भाव प्राप्त करने की दिशा। जब साधन भक्त अपनी इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं, जैसे आप हरी नाम कर रहे हैं किसके द्वारा कर रहे हैं जड़ीय मुख जीवा, भगवान का चिंतन कर रहे हैं किसके द्वारा कर रहे हैं जड़ीय मन के द्वारा कर, परिक्रमा कर रहे हैं जड़ीय छाया के द्वारा कर। अभी हमारा सब कुछ जड़ है किंतु भाव को प्राप्त करने के लिए यदि इन इंद्रियों की सेवाओं के द्वारा भगवान की सेवा इसे कि भाव को प्राप्त हो तो वो साधन होगा। भाव उद्देश्य नहीं है, तो वो सात अनुसार बने। भाव के ईश्वर को कहते हैं, बहुत चीजें इसमें सीखी ली है। भाव के ईश्वर कहते हैं भक्ति में प्रवेश करने के लिए पहले श्रद्धा से समझना होगा। पहले आप श्रद्धा ही समझाएं तो फिर श्रद्धा किसको कहते हैं। श्रद्धा दो प्रकार की है, एक लौकिक एक परमात्मा। लौकिक की श्रद्धा और किसी को प्रणाम किया, किसी को आदर दिया, ये लौकिक की श्रद्धा। परमात्मा की श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा करते विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय है। इसने भक्ति पहले सत कर कि ऐसा विश्वास दृढ़ हो कि कृष्ण की भक्ति करने से हमारे जीवन का सब कुछ करना सफल, कृष्ण भक्ति करने से हमारा जीवन सफल, ऐसा दृढ़। भक्ति तो अन्य उपाय वर्जम श्रद्धा उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष है। और उपायों को छोड़कर भक्ति को जो लाए जो क्रिया सकता। और एक चीज समझिए, श्रद्धा का मूल क्या है। जिस संघ से हमको कृष्ण के प्रति प्रवृत्ति हुई है भक्ति करने की, उसे एक चीज होगा, कृष्ण सेवा की वासना जगा देते हैं साधु संघ, और कोई नहीं जगा सकता। कृष्ण सेवा की वासना ही ये श्रद्धा का मूल है। कृष्ण की सेवा करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, जन्म जन्मांतर तुम्हारे सफल हो जाएंगे, इस दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा। होने का लक्षण क्या है, भगवान के वचनों में, गुरु के वचनों में और शास्त्र के वचनों में श्रद्धा। बहुत से लोग गीता को मानते हैं, मान करके भी नहीं मानते हैं। क्या कैसे नहीं मानते, गीता तो पढ़ते हैं, गीता के श्लोकों का उच्चारण का भी करते हैं, किंतु कृष्ण को भगवान नहीं मानते, तो गीता को मानना नहीं हुआ। हमारे पहले राष्ट्रपति थे राधा कृष्ण, वो उनका कहना था, बड़े भारी विश्व के दार्शनिक थे, कृष्ण के अंदर में जो आत्मा थी वो तो भगवान ने ब्रह्म है, किंतु शरीर नहीं। गीता में ऐसा नहीं लिखा, सर्व धर्मान प्रत्यज माम एकम, कृष्ण स्वयं भगवान। ये मान करके तब फिर गीता पढ़ो तब तक अभी कुछ। इसलिए बहुत से लोग हैं गीता भी पढ़ते, कोई आधा मानते हैं, कोई प्रक्षिप्त मानते हैं, और दस कुछ श्लोक को सीख, कोई गीता का कुछ मानते, कोई भागवत मानते, कोई वेदी नहीं मानते, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं। आपके साथ में भी ऐसे बहुत लोग हैं, लोगों को पानी पिलाएंगे, ट्रैफिक दिखलाएंगे और सब बतलाएंगे, भगवान निराकार है ऐसा कहेंगे, किंतु गीता भागवत की कहती नहीं, मैं परब्रह्म हूँ, हमारा रूप है, ये सब नहीं। क्योंकि गीता मानने का कोई नहीं, इसलिए श्रद्धा उसको कहते हैं जो शास्त्र के वचनों में, गुरु के वचनों में, कृष्ण के वचनों में। गुरु भी ऐसा कैसा नहीं, गुरु का भी लक्षण है, गुरु में यदि लक्षण है तो उसको गुरु मानो, नहीं तो मत मानो। संसार से विरक्त हो, सत्य का तात्पर्य जानने वाले हमारे संदेह को दूर करते और भगवान का चल कर ये सब यदि लक्षण है ऐसे गुरु का ऐसे श्रद्धा होने से सती भजन करने से अनर्थ की निवृत्ति होती है। अनर्थ क्या? स्वरूप भ्रम, असत कृष्ण, हृदय दौर्बल्य और अपराध। हम अभी भूल गए हैं हमारा स्वरूप क्या है। हम जीवात्मा हैं, भगवान के अंश हैं, हमारा स्वरूप परम आनंदमय है। उसको भूल करके शरीर में आसक्त होकर के सुख और दुखी में हम सुखी और दुखी हो। किसी ने हमारे स्त्री को एक थप्पड़ मारा, तुमको तो थप्पड़ नहीं लगा, थप्पड़ किसको लगा? तुम्हारी थप्पड़। तो तुमको तो तुम क्यों दुख जाते हो? अपनी स्त्री से भी ज्यादा तुम दुख हो, क्यों? ये आसक्त। ऐसे ही संसार में हम आसक्त हो गए। आसक्ति चाहिए कृष्ण के चरणों में, इसलिए हमको दुखी। असत कृष्ण स्वरूप भ्रम होने से कि हम आत्मा है ये भूल जाते हैं, भगवान के दास हैं भूल जाते हैं। तो असत कृष्ण असत प्रकार की लालसाएं होती है संसार का सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संसार की पदगर मान के लौकिक सुख, पारलौकिक सुख, स्वर्ग इत्यादि। असत कृष्ण हृदय को क्या करें ना करें कोई विचार नहीं रहता। कभी क्रोध के द्वारा ही हम उसके वशीभूत हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुछ नहीं करता और अंत में अपराध भगवान के चरण में अपराध। ये सब दूर होने पर उसकी भक्ति निष्ठा वाली, निष्ठा माने क्या? स्थिर हो जाता है। साधु संघ पहले होगा, साधु संघ समझता नहीं है उसे सुकृति बनेगी, फिर दूसरा साधु संग होगा, उसमें दूसरे साधु संग में हरि के कथा को सुनने में रुचि हो, भागवत की इत्यादि सुनने में रुचि होगी, गीता सुनने में रुचि होगी, वैष्णव की सेवा में रुचि होगी। रुचि भी दो प्रकार की होती है, एक रुचि होती है निष्ठा होती है बुद्धि पूर्विका, और रुचि बुद्धि पूर्विका नहीं। रुचि किसी चीज से जहां थोड़ी सी लालसा हुई तब रुचि होने पर हरिनाम करने में कष्ट नहीं होगा, लीक नहीं आएगा, यह रुचि का लक्षण है। रुचि को भी दो प्रकार बतलाएंगे, एक वस्तु वैशिष्ट अपेक्षित, वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षित। कहीं ठाकुर जी को सुंदर सजा दिया गया, सोने के अलंकार पहना दिए गए, मोर मुकुट इत्यादि धारण कर दिया गया, वस्त्र भी बड़े सुंदर चमकीले पहने तो अच्छे लगते हैं। तो वहां पर हजारों आदमी जाएंगे दर्शन के लिए, और वही ठाकुर जी मैले थोड़े से हो गए, कपड़े अच्छे नहीं, कोई नहीं, कोई जाए। एक आदमी गान कर रहा है, खूब भक्ति है, रो भी रहा है, किंतु स्वाद ठीक नहीं है, सुरीला तान नहीं है। और एक व्यक्ति सुरीले कंठ से सुरीले यंत्रों पर वो गान करता है तो लाखों आदमी सुन रहा है, और जिसका थोड़ा सुरीला नहीं है किंतु भक्ति खूब है तो अभी उसकी कोई बात नहीं। इन्हें वस्तु वैशिष्ट अपेक्षा रहती है, ये कुछ कम है, अगर वस्तु की वैशिष्ट नहीं है तो भी हरि नाम सुना, महाप्रभु का और कृष्ण नाम सुना, बस गदगद हो जाए। यही और बढ़ेगी तब फिर क्या होगा? तब आसक्ति हो, आसक्ति यहाँ हो गई तहां तो काम बहुत आगे बढ़े, अब पतन होने का संभावना कम रहेगा। आसक्ति किसको कहते हैं? आसक्ति भी दो प्रकार की, एक भजन साधन के प्रति आसक्ति, हरिनाम 3 लाख हरिनाम करते हैं, 1 लाख हरिनाम करते हैं, वैष्णव के लिए गणपत करते हैं, साधु संग करते हैं, उसमें आसक्ति। और एक होता है इष्ट देव के प्रति आसक्ति, तो पहले साधन के प्रति आसक्ति होगी और उसके बाद में तब होगी, और उसके बाद में आसक्ति किसके प्रति? इष्ट। ये आसक्ति हुई, आसक्ति होने पर परिणाम नहीं करने पर मन खराब हो जाए, साधु संग नहीं होने पर मन खराब हो, स्वाभाविक उसमें आसक्ति रहेगी। इसके बाद में आसक्ति के बाद में आएगा भाव, इसी का नाम है रति। इसी भाव के लिए मैंने बताया, क्या बताया? शुद्ध सत्व विशेषण, इस उसको थोड़ा समझिए। अशुद्ध सत्व ये जड़ जगत में जो कुछ देख रहे हैं, यह शरीर बांस तंबू जो कुछ, ये सब जड़ चीजें, इसलिए जड़ सत्व। सत्य माने सत्ता, हमारा शरीर जो कुछ है चेतन दिखलाई नहीं पड़ता, चेतन आंखों से चेतन दिखाई, इसलिए जड़ आंखों से ये सब कुछ दिखाई पड़ता है जो इसी जगत में रह गया, इसलिए इसको जड़ सत्व कहा। एक होता है मिश्र सत्व, हम आत्मा शुद्ध सत्व है किंतु अभी शरीर के द्वारा बद्ध हो गए, इसलिए हमें अभी अपना परिचय कुछ मालूम नहीं होता, भगवान को भी नहीं पता, इसलिए इसको बद्ध अवस्था को मिश्र सत्व कहते हैं। और जब आत्मा शुद्ध हो जाता है, शरीर से निकल करके मन से भी अतीत हो जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसको शुद्ध सत्व। और एक है विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व माने भगवान, और उनकी शक्ति से पर जगत में गोलोक वृंदावन में जितने भी शरीर हैं, जो कुछ सत्ता है वहाँ विशुद्ध सत्व। इसको और अच्छी तरह से थोड़ा सा जानने के लिए ये जरूरी है, शुद्ध सत्व विशेषा सत चित आनंद से मिलकर के भगवत्ता है, सत चित आनंद सत से संधि में चित से संधि और आनंद से हला दे। जब संबित, संबित माने भाव, ध्यान भाव, हमारे जितने भी भाव है उसके अंतर, श्रीमती राधिका जी के जो कृष्ण के प्रति भावनाएं हैं सेवा की, ये सब विशुद्ध सत्व। इसलिए संधिनी शक्ति के ऊपर, संधिनी सत्ता के ऊपर जब राजिनी और संबित माने भाव दोनों का सम्मिलित भाव प्रकट होता है, तो इसको विशुद्ध सत्व का क्या तात्पर्य? श्रीमती राधिका जी के जो भाव है कृष्ण सेवा, इसी का नाम विशुद्ध भाव, यही विशुद्ध सत्व। हम जब उनका चिंतन करते हैं तो वहां से जैसे हमको कृष्ण की सेवा करने की लालसा है तो कुछ भाव होता है, हम यदि सखाओं के जैसा बनना चाहें कृष्ण की सेवा करना तो सिद्धांत बन उनका भाव, और सखियों का अनुरोध होकर के उनकी सेवा करने की भावना होगी तो ललिता विशाखा इत्यादि रूपमंजरी इत्यादि उनके अंदर होकर के चिंतन करें, तो उनके जो भाव हैं हमारे अंदर में जब संक्रमित होंगे तब उसको विशुद्ध कह सकता। इसलिए हम लोगों को पहले श्रद्धा से लेकर निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव कृष्ण के प्रति किसी प्रकार से लग किया जाए। जेने के न उपाय न कृष्ण मनोनिवेश अलग किसी भी प्रकार से हो जाते हैं, यहाँ तक कि शत्रु भाव से भी शिष्यपाल संत भाव से इत्यादि ने शत्रु समझा, जरा चंद शत्रु और प्रेम के साथ में मनोनिवेश करेंगे, थोड़ा भी मनोनिवेश करके भगवान का नाम करेंगे, कलयुग में इससे बढ़ सकता हो। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही होते कलो नाश्ते नाश्ते हो नाश्ते जीव का निर्वाह के लिए जो कुछ करते हैं करें, किंतु मांस मछली प्याज रस अंगोष उनको छोड़ा जाए, किसी को भी कष्ट न दे, इनका निर्वाह के लिए अपना बिजनेस व्यापार सब करें और भगवान का स्मरण चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी। और यदि किसी एक्सपर्ट को गुरु बना करके यदि उसके अंगत्व में नकली नाम देता तो बहुत जल्दी कर। इसलिए एक साधु संघ के साथ में भगवान का नाम करें, आप लोगों का कल्याण होगा, यही काम करते हैं।
यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण के अपेक्षा भी प्रभावशाली है, और इच्छा माने होता है छिटा, और दीक्षा माने होता है दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान सुनो इधर कर भाई, जो जहां वहां पर सुनो, और दीक्षा माने होता है दिव्य ज्ञान, और छा है जितने पाप हैं उसके जो फल हैं उन सबको स्खालन माने दूर कर देता है। इस प्रक्रिया से पद्धति से कृष्ण तत्व का ज्ञान, जीव तत्व का ज्ञान, भक्ति तत्व का ज्ञान, माया तत्व का ज्ञान ये सब हो, और कृष्ण से संबंध हो, कृष्ण के साथ में जो भगवान है उनके अंश है, उनके साथ में क्या हमारा संबंध है, जिस संसार के द्वारा ये होता है और सारे पाप दूर हो जाते हैं और अंत में प्रेमा भक्ति होती है, उस पद्धति का नाम दीक्षा है। हरिनाम ही सबसे श्रेष्ठ है, भगवत स्वरूप दीक्षा के द्वारा अपने इष्ट देव से संबंध ज्ञान होता है और हमारा चित्त पवित्र हो जाता है, जैसे जिससे हरिनाम को और अच्छी तरह से कर सके, इसलिए दीक्षा की जरूरत है। किंतु दीक्षा से भी बढ़कर के है हरिनाम, इस चीज को समझना, दीक्षा मत किंतु दीक्षा के बिना हरिनाम शुभ नहीं होगा, इसलिए दीक्षा की चीज जरूरत है। तो अभी हम लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं और आप लोग यहाँ पर कीर्तन करेंगे, तब तक हो जाएगा, इसके बाद अभी तुम कीर्तन कराओ या और तीन जो कर लेंगे।
Krishna, Krishna.